देखिए आयत को, वलकुम और तुम्हारे लिए। कुम कौन है इधर? शौहर, मुजक्कर का सीगा है। कौन सा शौहर है? लिखिए अपने पास ब्रैकेट में जिसकी बीवी मर रही है। वलकुम और तुम्हारे लिए। निस्फू, आधा है। मा तरक अज़वाजुकुम, जो छोड़ दिया तुम्हारी बीवियों ने। मर्द जिंदा है, बीवी फौत हो रही है। बीवी के पास माल होगा अपना। ये कौन सा माल है? जो बीवी का जाती माल है। ये कहाँ से होता है? हर एक अपने से पूछ ले। शौहरों को तो कहेंगे जहर खाने को पैसे नहीं, और फिर जब निकलते हैं तो कहते हैं वो बस वो रख के भूली हुई थी, हैं वो कपड़े के नीचे थे। सबसे ज़्यादा जो लड़ाइयाँ शौहर बीवी में होती हैं ना, अमूमन इल्ला माशाल्लाह, वो माल पे होती हैं। हाँ, खेचातानी होती है, लेकिन बीवी के पास माल हो सकता है। मसलन नंबर एक कि बीवी को अपने माँ बाप से विरसे में मिला कोई चीज़, जहेज में मिली सोने की सूरत में। फिर अगली सूरत माँ बीवी के पास होने की हक मेहर के पैसे हो सकते हैं, सोना जेवर चांदी हो सकती है। फिर इसी तरह बास हालात में औरतें खुद भी कमाती हैं। अब एक औरत का जो जाती पैसा था, देखिए इस्लाम उसको उसका ही जाती समझ रहा है। हमारे कल्चर में एक और बड़ी बुरी बात है, और वो क्या है कि बीवी के माल को भी शौहर का ही माल तस्लीम किया जाता है। वो कमाएं तो भी शौहरों का, और वो ना दें तो ज़बरदस्ती लेंगे। लेकिन यहाँ से पता चला कि औरत अपने माल की खुद वारिस है। अब मर गई औरत। सूरत क्या है? इल्लम यकुल लहुन वलदुन, उस जाने वाली की औलाद थी। एक औरत मरी है, उसका शौहर अभी जिंदा है और उसके बच्चे भी हैं। यहाँ ये क्यों नहीं कहा कि उन दोनों की औलाद है? इल्लम यकुल लहुन वलदुन की वजह ये क्यों नहीं कहा कि लहुमा, शौहर और बीवी के बच्चे होते हैं ना, इसलिए कि ज़रूरी नहीं कि ये बच्चे इसके इस शौहर से हों, किसी पहले शौहर से भी वो बच्चे हो सकते हैं। एक औरत के बच्चे हों, चाहे अपने इस शौहर से हों जिसके निकाह में वो फौत हो रही है, या पहले किसी शौहर के हों जिससे तलाक या बेवगी की सूरत में अलहदगी हो चुकी। अब इस शौहर को क्या मिलेगा? आधा। ये देखिए, ये पेंसिल ही मिसाल बनाते हैं। ये बीवी की टोटल इनकम मनी थी, उसके बच्चे नहीं हैं, इस शौहर से भी नहीं है, उससे भी नहीं है, अब शौहर है बस। तो क्या होगा? ये देखिए, आधी पेंसिल काट के ये शौहर को दे देंगे। क्यों लड़ते हैं अपने शौहरों से पैसों पे? छुपा छुपा के रखते हैं। अगर आज आंखें बंद हुई तो आधा तो लीगली उनका, तो ज़िंदगी में दे दें, हैं। बाज़ औरतों का बड़ा दिल घटता है ना शौहरों को देते हुए। तो आप देखिए कि बच्चे ना होंगे तो शौहर को आधी आधी इनकम उसको मिल जाएगी। ये है फर्स्ट सिचुएशन, इसके ऊपर मन लगा सकते हैं आप। सेकंड केस, फ़ैन कान लहुन वलदुन, अब औरतों के बच्चे भी हैं। मुराद क्या है कि इसी शौहर से भी हो सकते हैं और किसी पिछले शौहर से भी हो सकते हैं। अब शौहर को क्या मिलेगा? फलकुम, तुम्हारे लिए। कुम कौन है? मुसलमान मर्द। अर्रुबु, चौथा हिस्सा है। किस चीज़ का? मिम्मत रखना, जो वो छोड़ गई। क्या छोड़ी? ये पेंसिल। पहले कितनी मिली थी? आधी। अब कितनी मिली है? 1/4। कम हो गया ना। क्यों? बड़ी ऑब्वियस बात है कि बच्चों को मिलना है। बच्चों को कितना मिलना है? जैसे ऊपर बात हो गई, जिस तरह बाप के छोड़े हुए माल में से बच्चों का हिस्सा होता है ना, बिल्कुल इसी तरह जब माँ मरती है तो उसके पैसों को भी उसी तरीके से, उसी बांट के हिसाब से खर्च करेंगे जो चार केसेस हमने ऊपर पढ़ लिए। लेकिन ये सब कब होगा? मिम्बा दिवसी यती यूसी नबिहा अउदैन, वही हुक्म जो पहले मर्द के लिए था कि वसीयत कर जाए औरत तो उसको पूरा किया जाएगा, या उसके सर पर कोई कर्ज होगा तो उस कर्ज की अदायगी के बाद होगा। ठीक है, कर्ज पहले अदा होगा, फिर वसीयत पूरी की जाएगी, फिर शौहर को दिया जाएगा, फिर जो बचेगा वो बच्चों का होगा। ये था फर्स्ट केस, दो बातें इसमें हो गई। अब चलिए यहाँ से आगे, अब शौहर के हिस्सों का ताल्लुक है। ये जो था ये बीवी का हिस्सा था, अब खुदा न खास्ता किसी बीवी की ज़िंदगी में ही उसके शौहर का इंतकाल होता है तो क्या होगा? वला हुन्ना, और उनके लिए। किन के लिए? बेवाओं के लिए, यानी वो औरतें जिनके शौहर का इंतकाल हो रहा है। क्या होगा? अर्रुबु, चौथा हिस्सा होगा। मिम्मा तरक तुम, जो तुमने छोड़ा। किस सूरत में? इल्लम यकुल लकुम वलद, जबकि ना हो तुम्हारे बच्चे। बच्चे नहीं हैं तो 1/4 मिलेगा। ये देखिए ये पेंसिल, एक मर छोड़ के मर रहा है, बच्चे नहीं है, सिर्फ बीवी है इस सूरत में, तो इस पेंसिल के चार हिस्से करेंगे आप, तो ये इतना टुकड़ा उसको दे दिया जाएगा बीवी को। ये किस सूरत में होगा? जब बच्चे नहीं हैं दोनों के, और इसमें फिर वही सिचुएशन है कि मरने वाले के इस बीवी से हो या किसी पिछली बीवी से हो, डजेंट मैटर, यानी 1/4 मिलेगा। अच्छा, अच्छी अमाउंट है, जैसे 1 करोड़ में से 25 लाख उसको मिल जाएंगे। सेकंड सिचुएशन, फाइन कान लकुम वलदुन, और अगर हो तुम्हारे बच्चे तो फलाहुन्न सुमुन, तो उनके लिए 8वां। अब कितना हो गया, उस चौथे का भी आधा रह गया, 1/8 रह गया, यानी 25 लाख मिल रहा था, तो अब 12.5 लाख मिलेगा 1 करोड़ में से। मिम्मा तरक तुम, उसमें से जो तुमने छोड़ा, लेकिन ये सब कब होगा, मिम्बा दी वसीयत इन तू सू नबीहा, उस वसीयत को पूरा करने के बाद जो तुम करते हो, या फिर अउदैन, या कर्ज की अदायगी के बाद। इस सूरत में ये हिस्से पूरे हुए। बहुत ही आसान है ना, दोहरा देती हूँ। शौहर और बीवी के हिस्से कैसे हैं, पहले बीवी के फौत होने की मिसाल आई, बच्चे नहीं हैं तो शौहर को आधी जायदाद बीवी की मिल जाएगी, बच्चे हैं तो चौथा हिस्सा मिलेगी, इतनी। दूसरी सूरत है, शौहर का इंतकाल हुआ तो बच्चे नहीं हैं तो 1/4 मिला, और बच्चे अगर हैं तो फिर 1/8 मिलेगा। यहाँ वही 1:2 का रेशियो है। फर्क क्या है, वही बात जो बेटे और बेटी की मिसाल में थी, कि मर्द की जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। और एक बात फैक्ट है कि औरत के हाथ में जितना ज्यादा पैसा आता है ना, वो उतना उसका गलत इस्तेमाल करती है। नपा तुला पैसा होता है ना, तो वो उसको सोच समझ के खर्च करती है, खुला होता है तो कहती है खैर है। मर्द के पास जितना पैसा होगा ना, वो उसको कंस्ट्रक्टिव कामों में लगाएगा, कोई बिजनेस माइंडेड होगा तो वो फिर रिसाइकल कर देगा बिजनेस में, कोई अल्लाह से डरने वाला होगा तो वो उसको अपनी ज़ात पे लगाने की बजाय दूसरों की खिदमत में लगाएगा। औरत ज़्यादा माल अपनी ज़ात पे लगाती है, और आप आजमा के देखें, एक मर्द जो कमाता है, अपनी कमाई का शायद 5 से 10% अपनी ज़ात पे लगाता हो। किसको देखा आपने रोज़ कपड़े खरीदते, कढ़ाइयाँ करवाते, सिल में सितारे कराते, मैचिंग पर्स लेते, जूतियां लेते, इल्ला माशाल्लाह कोई होंगे 1-2%, वो भी बेचारे फिर बातें सुन सुन के छोड़ देते हैं, हैं? लेकिन मर्द अमूमन नहीं लगाते, 2 सफ़ेद 4 जोड़े, उनको 1-2 पैंटें आप ले दें तो, या उनकी कोई गैस का खर्चा होगा, गाड़ी के पेट्रोल का खर्चा होगा, या कोई थोड़ा बहुत कहीं बैठे किसी के साथ खा लिया, कोई यही खर्चे होते हैं ना। इसके बरक्स आप औरतों के खर्चों की लिस्ट बना के देखें, तो आपको अल्लाह के ये कानून समझ में आ जाएंगे कि अल्लाह ताला ने इन बातों को कितनी अच्छी तरह रखा। अब यहाँ तक हम क्या समझ चुके, बच्चों के हिस्से वाजे, माँ और बाप के हिस्से वाजे हैं, बीवी शौहर के हिस्से वाजे हैं। अच्छा, अब सवाल रहता है कि पीछे कौन बचा और किसको हिस्सा मिलना चाहिए। भाई बहन, तो याद रखिए कि बीवी शौहर बच्चे जो जिनका किस्सा हो गया ना पीछे, ये तो है वो हिस्सेदार जिनको हर हाल में मिलना है। लेकिन भाई या बहन, यानी भाई एक है या ज्यादा, बहन एक है या ज्यादा, आम हालात में मरने वाले की जायदाद में उनका कोई हिस्सा नहीं होता, ठीक है। भाई बहनों को हिस्सा मिलने की एक ही सूरत होती है कि जो मर रहे ना उसका बाप हो और ना बच्चा हो, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल एक अकेला शख्स, अपनी जुबान में उसको कुछ बोलते हैं, कोई है ही नहीं आगे पीछे, ऐसे शख्स को जो मरे और उसके ना बाप, उसकी ना आगे नस्ल में कोई हो ना पीछे हो, यानी ना असल हो, असल कहते हैं जड़ को, बाप दा पीछे बाप लोग, और फरा कहते हैं जो ब्रांचेस होती हैं, यानी औलाद, यानी जब बच्चे और माँ बाप दोनों ना हो ना, खासतौर पे बाप, तो फिर कुछ कंडीशंस के साथ भाई बहनों को मिलता है, और ऐसे शख्स को कलाला कहते हैं। इसका तذکرہ अगली आयत में आ रहा है, वइन काना रजुलुई यूरसु कलाला, और अगर हो वो मर्द जो वारिस, जिसकी मीरास बट रही है, कलाला, कलाला का लफ्ज काफ लाम लाम से है, कलल से, कलल कहते हैं थक जाने को। आप लोगों ने अरब लोगों को एक गोल सा रिंग सर पे पहने हुए देखा होगा, जो वो अपने कपड़े के ऊपर रख लेते हैं उसको जमाने के लिए, उसको अकलील कहते हैं। उसमें होता क्या कि सर ऊपर से नंगा होता है, लेकिन साइडों के ऊपर चीज़ होती है, तो कलाला उस शख्स को कहते हैं कि जिसका सर नंगा है, यानी करीब के रिश्तेदार नहीं है, बाप बच्चे नहीं है, हाँ इर्द गिर्द झालर में भाई बहनों की सूरत में दूर के रिश्तेदार है। और इसी तरह कलाला थक जाने से है तो मुराद ये है कि यहाँ जाते जाते नसब थक चुका होता है। दूसरे लफ्ज़ों में कह लें वो औरतें जो बेचारी किसी वजह से शादी नहीं करती, कमाती भी हैं खूब, पैसा भी जमा हो जाता है, बाप का इंतकाल ज़िंदगी में हो चुका है, शादी तो की नहीं थी, अब उनका क्या किया जाए उनके माल का। तो इस सूरत में यूरसु कलालतन अविमरअतुन व लखू अखुम व औ उख्तुन, एक मर्द या औरत जो कलाला बन के मरता है तो उसका माल बटने का तरीका क्या होगा। पहली सूरत लहू अखुन व उख्तुन, उसका एक भाई या एक बहन है। अब यहाँ से फिर उनके हिस्से देख लीजिएगा कि इसको अल्लाह ताला ने किस तरह बांटा कि जब कोई मर जाए तो उसकी बहन और भाई हो तो फलिकुल्ली वाहिद मिनहुम सुदुस, तो उनमें से हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा, जैसे शुरू में बाप और माँ को मिला था। यहाँ देखिए भाई और बहन में एक और दो की रेशो नहीं है, वो सिर्फ बेटे और बेटी की सूरत में थी। यहाँ क्या है कि मरने वाला मर गया, ना बाप है ना बच्चा है बेटा है, और उसमें आगे तक नस्ल फिर चलती है, तो उस सूरत में क्या किया जाएगा कि उसके माल को उसके भाई बहनों में बराबर बांट दिया जाएगा। जितना भाई को मिलेगा जितना बहन को मिलेगा उतना ही सबको मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, दूसरी सूरत देखिए, फ़ैन कानु अक्सर मिन ज़ालिक, वो अगर इससे ज़्यादा हों, किससे ज़्यादा, अखुन और उख्तुन। पहली सूरत क्या थी, एक भाई है या एक बहन है, अब दूसरी सूरत है कि बहुत सारे भाई और बहुत सारी बहनें हैं, अमूमन जैसे होता है, तो क्या होगा, फ़हुम शुरका उफ़ सुलुस, तो वो शरीक हैं एक तिहाई में। फिर मरने वाले के माल को तीन हिस्सों में बांटा जाएगा और ये जो एक हिस्सा है सारी बहनों और भाइयों में बराबर बांट दिया जाएगा। लेकिन मिम्बादी वसीयतिन यूसा बिहा, ये कब होगा, उस वसीयत को पूरा करने के बाद जो उस मरने वाले ने की, औ दैन, या उसके ऊपर कोई कर्ज है तो उसको पूरा करने के बाद। क्यों है ये हुक्म, इसलिए कि गैर मुदारिन, ना वो नुकसान देने वाला हो किसी को, यानी इसमें किसी की हक तलफी नहीं होगी, किसी को कम किसी को ज़्यादा मिलेगा तो हक तलफी की उम्मीद हो सकती है। और फरमाए वसीयतम मिनल्लाह, ये अल्लाह का हुक्म है, अलीमुन हलीम, अल्लाह ताला हिल्म वाला भी है और इल्म वाला भी है, तो लिहाजा ये जितने कामात उसने दिए इनको सुनने से सोचने से, ये मत सोचो कि ये कोई जज्बाती फैसले हैं, आपको इन बारीकियों से अंदाज़ा हो रहा होगा कि अल्लाह ताला ने कहाँ कहाँ हिस्से दिए हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया एक हदीस है मिश्कात की कि इन्नल्लाह कद आता कुल्लज़ी हक्किन हक्कहु, बेशक अल्लाह ताला ने हर हकदार को उसका हक दे दिया, लिहाजा फला वसीयत ली वारिस, अब कोई वसीयत नहीं है वारिस के लिए। तो पता क्या चला कि अल्लाह ताला ने ये कानून हिकमत के साथ दिए हैं, तहम्मुल के साथ दिए हैं और इल्म के साथ दिए हैं। और इतना कानून पढ़ाने के बाद क्या कहा जा रहा है आयत 13 में, तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, कौन सी, ये माल के देने और लेने की। वमई युती अल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा, जो अल्लाह की इताअत करेगा और उसके रसूल की, यानी खुशी से इन हुक्मों को मान जाएगा, तो अल्लाह उसको उन जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं और वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। वज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, और यही है असल में बड़ी कामयाबी, विरासत की बांट को अल्लाह ताला ने यहाँ फौज़ुल अज़ीम कहा। कोई मुकम्मल तौर पे कामयाब होना चाहता है तो उसको अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए हुक्मों को दिल की खुशी से मानना पड़ेगा, दिल में ग्रज नहीं रखना, बोझ नहीं समझना। और अगर किसी से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा ना, तो वो मैं यासिल्लाह व रसूलहु, और जो अल्लाह की नाफरमानी करे और रसूल की नाफरमानी करे, व यतअद्द हुदूदहु, और उसकी हदों से आगे निकल जाए, तो युदखिलहु नारन, वो दाखिल करेगा इसको आग में, कब तक, खालिदन फीहा, हमेशा रहने वाला उसमें। देखिए काफिर की बात नहीं है, विरासत की गैर शरई तकसीम की बात है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत का खुलासा है कि एक शख्स सारी ज़िंदगी नेकियां करता रहता है, हत्ता कि उसके और जन्नत के करीब में बहुत थोड़ा फासला रह जाता है, یہاں تک کہ وہ غلط وصیت یا وراثت کی غلط بانٹ کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے. یہ اتنا بڑا عمل ہے. آپ دیکھیے کہ انسانوں کے معاملات میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حساس ہیں. تو یہاں بتا دیا کہ اگر کسی کی حق تلفی کی تو گویا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور حدوں سے آگے نکلا. ایسا شخص ہمیشہ کے لیے آگ میں رہے گا اور اس کے لیے ولہو عذاب مہین, اس کے لیے رسوا کرنے والا ذلت والا عذاب ہے. اب یہ ساری باتیں جو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے آج پہلی دفعہ سنی ہوں گی, ان ساری باتوں کو سنتے وقت اگر اس وقت آپ دو چار باتیں جس سے آپ اپنی پریشانی کو کم کر سکیں وہ نوٹ کر لیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ قرآن پاک میں جو باتیں آئی ہیں براہ راست میرے اور آپ کے عمل میں اس حد تک نہیں ہے کہ ہمیں کسی کے ورثے کی بانٹ کرنی ہے. نمبر ایک, اس کو علم الفرائض کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ علم تو تین ہے, یعنی اصل جو کچھ ہم دنیا میں ادھر ادھر کر کرا رہے ہوتے ہیں نا, اس میں سے اصل علم جو ہے نا وہ تین ہی ہے, جس میں سے ایک علم الفرائض ہے, فریضہ ہے. اس کا سیکھنا بھی کہتے ہیں فرض ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں اس بارے میں بہت مہارت نہیں حاصل کر چکا, حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ وراثت کے موضوع پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک پوری کتاب ہے. اس کے باوجود یہ علم ایسا علم ہے کہ جس میں لوگوں کو غلطی لگ جاتی ہے. تو ہم سب اس موضوع پہ براہ راست مکلف نہیں ہیں. ہمیں یہ باتیں ساری اس لیول پہ بھی اگر سمجھ آ گئی ہیں نا کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا مال مرنے کے بعد پورا میرا نہیں رہتا, ہم نے کسی کا ورثہ بانٹنا نہیں ہے. اس کے لیے الحمدللہ ماہر حضرات موجود ہیں, قرآن اور سنت اور بہت تھوڑی سی باتیں حدیث سے بھی ملتی ہیں. اس موضوع پہ بہت کچھ نہیں ملتا, لیکن ہم سب کے لیے اس میں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مرنے سے پہلے نمبر ایک اپنی وصیت لکھ کے رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو وصیت کرنا چاہتا ہے نا تو ایک رات بھی اس کی زندگی میں ایسی نہ گزرے کہ اس نے وصیت نہ لکھی ہو. اور جس صحابی کو آپ نے یہ بات کہی تھی وہ کہتے ہیں کہ واقعی پھر اس کے بعد میری زندگی میں ایک بھی رات نہ گزری بلکہ میں نے اسی دن اپنی وصیت لکھ کے رکھ لی. دوسری بات ہے کہ وصیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, لازمی نہیں ہے. اب میں اپنے لفظوں میں یہ ساری باتیں جو کی ہیں نا اس کو آپ کے ساتھ دہراتی ہوں تاکہ آپ کے جو شبے ہیں جو سوالات ہیں وہ اللہ کے حکم سے حل ہو جائیں. پہلی بات ہے کہ وصیت ون تھرڈ حد ہے اس کی, ضروری نہیں کہ آپ کریں. کوئی شخص مرتا ہے اور وصیت نہیں کرتا, کوئی فرق نہیں پڑتا, اسلامی طریقے سے اس کی وراثت بٹے گی. کیسے ہوگی سوال لکھواتی ہوں, آپ لوگ نوٹ کریں اور تھوڑا سا اس سے آپ کی ایک ایکٹیویٹی بھی ہو جائے گی. اور مجھے تو یاد ہے ہم نے میتھمیٹکس میں ایسے بہت سارے سوال کیے ہوئے ہیں لیکن اس وقت یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ قرآن کا حصہ ہے. آپ لوگ ایک سوال لکھیے, ایک شخص فوت ہوا, اس نے اپنے پیچھے 10,000 روپے چھوڑے, 10,000 آپ لکھیں, کل ترکہ 10,000. اس نے اپنے پیچھے ماں باپ, ایک بیوی, دو بیٹیاں اور ایک بیٹا چھوڑا. اس کے ذمے 1,000 کا قرض تھا اور اس نے 500 روپے کی وصیت کی. شرعی تقسیم کیجئے. کتنے لوگ ہیں جو بغیر کسی ہیلپ کے اس کو کر سکتے ہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ یہ آپ کے سامنے سوال لکھا ہوا ہے. دیکھیے کہ کل ترکہ اس کو بولتے ہیں نا, یعنی وہ مال جو چھوڑا جا رہا ہے, 10,000 تھا نا, 10,000, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ماں باپ بیوی سارے ایک ہی سوال میں کر لیتے ہیں نا بجائے اس کے الگ کریں, اور دو بیٹیاں دو لڑکیاں ایک بیٹا اس کو دینا ہے, और वसीयत की उसने, क्या लिखाया था, 500, 500 रुपए की। कर्ज भी था कुछ, कर्ज 1,000। चलिए अब आप देखें कि आप लोग हैंड रेज करें कि सबसे पहले क्या करेंगे। जी आप सबसे पहले कर्ज निकालेंगे, शाबाश, लिखिए आप। देखिए 10,000, जी 1,000 कर्ज के निकाल दें। मैं नुक्ते गलत लगाऊं तो माफ करें मुझे। चलें ये देखिए क्या रह गया पीछे, 9,000। अब उसका कुल तरका क्या बचा, ये बाकी तरका। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, कोई आप में से हैंड रेस करे। सब क्यों बोले, आता हो तो सब्र करना मुश्किल है ना। अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या करेंगे इधर, जी आप बताएं। वसीयत के 500 निकालेंगे, शाबाश। अब वसीयत के कितने निकले, 500। अब ये जहां देनी है वो एक अलग बात है, ठीक है। क्या रह गए, 8,500 हो गए। अब ये बाकी फिर बच गया, ये वसीयत निकल गई। अब क्या करेंगे, अब बेटे का निकलेगा। कितने लोग कहते हैं कि अब बेटे को देंगे, हैंड रेस करें। एक आप, दो और आप कह रही हैं बेटे को। अच्छा उसके बाद क्या सोचते हैं आप, जी जी आप बताइए। आपने पहले बता दिया जी, सदफ आप बताइए जी, इधर से आप बताइए। औलाद का पहले निकले, कितने लोग हाथ खड़ा करें, बिल्कुल जो सोच रहे हैं वही बोले। कितने लोग कहते हैं कि पहले औलाद का निकलेगा, इसका तो क्या बात समझे ही नहीं। औलाद को हमेशा आखिर में मिलता है, जो बचता है वो सारे तो औलाद का होता है। अब क्या करेंगे, देखिए अब हम समझेंगे कि मरने वाले ने असल में ये छोड़ा है जो बांटना है, ठीक है। अब देखिए इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह कर्ज पूरा हो गया, वसीयत निकल गई। अब पीछे ये 4 लोग हैं ना, अब हमने फिक्स्ड हिस्से अल्लाह ने दिए ना, माँ बाप और बीवी का हिस्सा फिक्स्ड है, यानी परसेंटेज में, तो बच्चों का कोई फिक्स तो नहीं है ना। तो इस 8,500 का 1/6 माँ को मिलेगा, इसी का 1/6 बाप को मिलेगा और इसी का 1/8 बीवी को मिलेगा। मैंने खुद ही बोल दिया, लेकिन आपको पता है ना कि बीवी, अब बच्चे हैं तो बीवी को क्या मिल रहा है, 1/8। माँ को कितना मिल रहा है, बाप को 1/6। और ये तीनों इसके निकलेंगे, हम इसको यूं हल करेंगे, देखिएगा 8,500 इंटू 1/6, कोई करके दिखाए, और इसको 8,500 1/8, इसको तकसीम करके बताएं क्या बनेगा जी, कोई कैलकुलेटर से करे जी प्लीज़, जो कर चुके हैं बता दे। बस 8,500 को 6 से डिवाइड करें, तकसीम कर दें बस, 1,416, 1,416.6, ये 1/6 है, और 1/8 से क्या हुआ, इसको भी मैं इधर ही लिखती हूँ, ये सेम होगा जी। आप प्लीज़ 1/8 से भी कीजिए, 1,062.5। अब आप देखिएगा प्लीज़, ये बहुत अहम नुक्ता, यही गलती करते हैं लोग। ये टोटल विरसे का 1/6 माँ, 1/6 बाप, ये गलती अगर आपने कर दी ना कि इसको माइनस करके निकालेंगे तो हिस्से बदल जाएंगे, ये बाप का हिस्सा हो गया 1,1,1, एक यानी 1,416.66, ये बाप के, ये माँ के और ये बीवी के, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट स्टेप बताएं। अब आप देख रहे हैं बीवी को कम मिल रहा है कि ज़्यादा, बीवी को मिला 1,062 और माँ और बाप को 1,400 मिला तकरीबन, ज़्यादा किसको मिला, माँ बाप को मिला ना। अब क्या करेंगे, कोई आप ही में से बता दें, अब तो बहुत आसान है बात जी, आप ले हाँ। अब करें क्या, आगे चलूँ कहाँ मैं। अब ये था ना विरसा, ये विरसा बचा हुआ था ना, हम इसमें से ये तीनों निकालेंगे। ये आप करें, आप में से कोई 8,500 माइनस 1,416.66 निकाले, फिर जो बचेगा फिर उसमें से ये तीनों इसे निकाल देंगे, तीनों को प्लस करके भी निकाल दें तो एक ही बात है। क्विकली करें जल्दी से, ये तो आपका मैथ का इम्तिहान हो गया है। आप में से किसको मैथ से छेड़ा है, पीछे क्या बच रहा है, बस मुझे आखिरी बता दें, सबको दे दे के। अब ये बचा है बाकी तरका, ठीक है। चलिए, अब आपने बताया कि ये तीनों, इसको मैं मिटा दूं इधर से, ये तीनों को मिल गया ना, इसको छोड़ते हैं। अब हमारे पास बचे हैं टोटल, देखिएगा 10,000 में से आखिर में बच गए 4,604। अब कौन रह गया, इनको भी मिल गया, इसको भी मिल गया, इनको भी, पीछे क्या रह गया, अब कैसे देंगे। चलें अब इसको बांटें आप दो बेटियों और एक बेटे के बीच में। कुरान में कहता है लिस जकरी बिस्लु हज़ल उन्सयैन। अब आगे समझेंगे, लड़कियां कितनी है, दो, हर लड़की को पॉइंट आउट करते हैं वन से, वन प्लस वन, लड़के कितने हैं, और एक लड़के को कुरान क्या कहता है, मिस्लु हज़ल उन्सयैन, तो क्या लिखूंगी, टू, टू है ना, टोटल कितने हुए, दो तीन चार, ये 4,604 जन, इसके हम चार हिस्से करेंगे, और चार हिस्सों में से एक हिस्सा एक बेटी को दे देंगे, दूसरा इसको दे देंगे, दो उनको दे देंगे, एक बेटे को। ये भी करके दिखाऊं, इसका तरीका ही, आपने तो मेरी सोई भी हिस्स जगा दी है जो मैथ की थी। देखिए इसका तरीका होता है बेटे का हिस्सा, इसको हम यूं करते हैं, टोटल हमने माल के करने ना चार हिस्से, दो प्लस दो, ठीक कह रही हूँ, चार, तो हम करेंगे, और बेटे को हम साबित कर, ये टोटल मनी लिखेंगे 4604.68 इनटू, बेटे का हिस्सा दो से प्रेजेंट होता है, नीचे हम करेंगे चार, इसको करे कोई आप में से प्लीज़, ये दो को इसको काट देते हैं, पीछे दो रह गया जी, 4604.68 को दो से तकसीम करके आप बताएं, बेटी का हिस्सा इस तरह, यही टोटल मनी आएगी 4604.68 इंटू, बेटी को वन से शो किया था तो वन बाय टोटल हिस्से फोर, ये अब आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका फिगर बिल्कुल बराबर आ जाएगा। बेटे का बताइए, बहुत आसान है, 4604.68 को दो से कर दें तो ये अभी आपको बता देते हैं, 4 3 और 2032, 2302 आ गया ना, चले मैंने कैलकुलेटर के बगैर कर दिया आपको, और इसको कीजिए चार से करेंगे तो ये आएगा इसका भी आधा, इसको डायरेक्ट चार से तकसीम कर दें तो ये तकरीबन बन जाएगा 51.17। जी शाबाश, देखिए ये है अब आपका फिगर, दो बेटियां ना, एक बेटी को 1,151.17 मिला, दूसरी को भी इतना ही मिलेगा, बेटे को मिला 2300, ये डबल हो रहा है। अब आपने रीचेक कभी किए थे सवाल के हमारा सही हुआ कि नहीं, ये सारी रकमें जमा करते जाएं, ये एक बेटी का है प्लस एक और का करें प्लस ये करें प्लस ये सब कुछ करते जाएं, एंड पे आपके पास 10,000 आ जाएगा। तो अब नहीं समझ आया तो फिर क्लियर हुई है बात, ये सारी बातें पढ़ते बताते हुए मुझे एक ख्याल आ रहा था कि ना रहे दौलत और ना पढ़े ये मसले, कितना खुश, क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चला गया तो उसके पीछे, यानी को रोने वाला भी ना हो तो वो खुशकिस्मत है, हैं, तो अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। यहाँ पे तिलावत सुनते हैं,
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين